ओम शांति। बाबा के घर में मधुबन तपोस्थल पर हम आए हुए हैं। ये स्थान यूं कहें स्वतः हमारे भाग्य में वृद्धि करता है, क्योंकि यहां के वाइब्रेशंस कहो, शक्ति कहो, बड़ों की तपोस्थली कहो, हर कर्म में बड़ों ने बाबा की याद को समेटा हुआ था। जो भी यहां कार्य हुए, कैसे हुए? बाबा की याद में। तो ये यादगार स्थल है, हमारे पूर्वजों का, बड़ों का ये यादगार स्थल भी है। अब बात आती है, हम ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हैं तो क्या हम भी अपने अंदर ऐसा तप का बल, यादगार वाला जीवन बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हम अपने पूर्वजों को याद करें, दादियां, एक शब्द में जिन्हें हम दादियां कहते रहे, या हमारे बड़े भाई, उनके जीवन में एक बाबा और कोई नहीं था। बाबा के प्रति प्यार, बाबा के प्रति समर्पण, ये बाबा का कार्य, बाबा की सेवा, इसके अलावा कुछ और नहीं था। और हमारे अंदर अगर उस कंपैरिजन में आते हैं तो हमारे अंदर तो संसार भरा हुआ है, अनेक बातें, अनेक संघर्ष, अनेक चिंताएं, अनेक प्रकार की दुविधाएं हमारे मन में है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले कोई दुविधाएं, समस्याएं नहीं होती थी, लेकिन हर समस्या में समाधान बाबा नजर आता था। बाबा बैठा है, बाबा है, अभी वो निश्चय हमारे अंदर नहीं है। तो आवश्यकता है हम अपने निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करें। मुझे याद आता है कि जब जब हम मधुबन में आया करते थे, हमसे निश्चय पत्र लिखवाया जाता था, अपना निश्चय पत्र लिखो। क्या ये मुझे निश्चय है कि ये ज्ञान भगवान का दिया हुआ ज्ञान है? निश्चय है। क्या मुझे ये निश्चय है ये जीवन सर्वोच्च जीवन है? क्या मुझे ये निश्चय है कि ये जो धारणाएं हैं, ये जो पवित्रता है, ये मुझे पालन करनी है, यही मेरा जीवन है, निश्चय है? इस प्रकार की बातें निश्चय पत्र में लिखवाई जाती थी। और ऐसा नहीं कि बहनों से या टीचर्स बहनों से। अगर मैं बात सुनाऊं आपको अपने बचपन की, हमें तो याद आता है क्योंकि ज्ञान में हम बचपन से आ गए, माता पिता भी ज्ञान में थे, तो मुझे याद आता है कि मधुबन में जब आया करते थे, दादी पूछा करती थी पिता से, कितना कमाते हो? क्या आमदनी है? आज आपसे कोई पूछे, उसमें से कितना खर्चा अपने परिवार के लिए करते हो, कितना यज्ञ सेवा में लगाते हो? और दादी राय भी दिया करती थी, अच्छा तुम्हारा खर्चा ये है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। परिवार में, प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में इतना करना है, इतना नहीं करना है। शादियों में जाना है तो ये करना है। दादियां ये भी राय देती थी। अगर बच्चे हैं तो बच्चे पर इतना खर्चा करना, ये इतना अधिक वेस्ट है, बताया करते थे। और यहां तक कि अगर हमें कुछ खरीदना है तो बोला जाता था, दादी से जाके पूछो ये खरीदना है। मैं आपको हंसी की बात सुनाऊं, जबकि मेरा समर्पण हो चुका था, बाबा के यज्ञ में मैं आ गई थी, मैंने फादर से कहा मुझे गाड़ी लेनी है। और फादर का स्वभाव ये था कि एक बार मैंने अगर मुख से कुछ निकाला है तो वो पूरा होना है। उन्होंने मुझे कहा गाड़ी तो आज की आज आ सकती है, आपने कहा आ सकती है, लेकिन अब चूंकि तुम आश्रम पर आ गए हो, पहले दादी से परमिशन लेके आओ, दीदी से परमिशन लेके आओ कि गाड़ी आपको मिले। लेके आओ। मैंने कहा पूछो, तो बोला मैं क्यों पूछूं, गाड़ी तुम चलाओगे, आपके मन की इच्छा है, आप पूछो, अपने बड़ों से परमिशन लेके आओ। और मैं गई दीदी के पास, सॉरी दादी के पास, दादी से मैंने कहा दादी मुझे गाड़ी चलाने की परमिशन आपसे चाहिए थी। दादी ने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दी, देखा दादी ने कहा अच्छा ठीक है, आगे कुछ नहीं बोली, इतना ही बोली अच्छा ठीक है। आगे मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि दादी की इसमें हाँ है या ना है, क्या है ये, अच्छा ठीक है, आगे नहीं पूछा, क्या पूछूं। दादी ने मेरे वहां से हटते ही, क्योंकि मैं थी दादी के पास, लौकिक पिता को फोन किया और कहा आप इसे गाड़ी लेकर के दो, दादी की परमिशन है, आप इसे गाड़ी लेकर के दो। लेकिन देखना, गाड़ी लेने से पहले इसको गाड़ी की ट्रेनिंग दिलवाना। तो फादर ने एक बार उनसे पूछा अच्छा गाड़ी लेनी है दादी, तो बोला हाँ सेवा का साधन बनेगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। मैं तो वहां से इतना सब पूछ के चली गई थी, मुझे आगे पीछे कुछ पता नहीं कि दादी ने हाँ कहा या ना कहा, क्योंकि उस समय चली गई थी। फिर जब मैं नेक्स्ट डे दादी से मिली, दादी बोलती है तुम्हारा काम हो गया, कहने का भावार्थ है कि पहले हर स्टेप पर पूछा जाता था, बाबा से परमिशन बाबा से पूछा जाता था, निश्चय और समर्पण, ये दो शब्द यज्ञ के थे बस। मन और बुद्धि का समर्पण और बाबा पर निश्चय। अगर आज हमारे जीवन में भी वही निश्चय हो, अब देखो अगर हम भक्ति वालों को, भक्तों को याद करें, भक्त शिरोमणि में मीरा का नाम आता है, मीरा की भक्ति प्रसिद्ध है, क्या वहां भक्ति में समस्याएं नहीं आई? मीरा के जीवन में समस्याएं नहीं दिखाई? देखो बहुत ज्यादा, उसके हर कदम पे समस्या दिखाई है, लेकिन उनके मुख से हमेशा कौन सा बोल दिखाया? मीरा तो गिरधर गोपाल, मीरा तो एक गिरधर गोपाल। क्या उसने शिकवा शिकायत की अपने परिवार की, मेरे परिवार ही मेरे आगे बाधा है, किसी को कहा? आज हमसे कोई कहे तो हम क्या करते हैं? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। ये भक्तों की भी खासियत रही, उन्होंने अपना निश्चय अचल और अटल डाला रखा, इधर उधर नहीं देखा। कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, इसमें नहीं गए। मेरा वो ईश्वर। अब किसी का भी देखो जीवन, प्रहलाद को क्या दिखाया? क्या उसके जीवन में कष्ट दिखाए? आपने और मैंने प्रहलाद से भेंट नहीं की है, लेकिन पता तो है ना, कहानियां तो सुनी है ना, वृतांत तो सुने हैं ना, और उन वृतांतों में प्रभु पर निश्चय, वो अज्ञानी कहो, भक्ति वाली भक्त आत्माएं कहो, और हम बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी तू आत्माएं हैं। हम अपने को क्या कहलाते हैं? ज्ञानी तू आत्माएं। मेरा इतना निश्चय है, और सचमुच अगर निश्चय है, आप कहेंगे निश्चय है, तो एक बात आज कहना चाहती हूं, निश्चय वालों के चेहरे देखो, मीरा का चेहरा देखो, उसको सदा मगन दिखाते हैं, चिंता में उलझन में, रोते हुए परेशानी में। अगर उसने कहीं उसके आंखों में मोती भी दिखाए ना, तो ऐसे दिखाए वो प्रभु प्यार में मस्त है। हमारे अंदर छोटी छोटी बातें चिंता का स्थान लेती हैं, उलझनों का स्थान लेती हैं, और हमारे मुख से वो नेगेटिविटी ही निकलती है। बुरा मत मानना, निकलता क्या है? नेगेटिव। हम एक दूसरे के लिए शिकवा शिकायत रखते हैं, और फिर अपने अंदर जो बीज बो लेते हैं वो कौन से बोते हैं? मुझे इससे नहीं बोलना, मुझे इससे नहीं बोलना, मुझे इससे नहीं बोलना। अब बताओ मेरे अंदर ज्ञान का प्रवाह कैसे चलेगा? चलेगा? मेरी जीवन या मेरा ये चेहरा योग मूरत दिखाई देगा? उनके चेहरे मगन है और हमारे चेहरे, और ये कारण है। ऐसे ही मैं अगर आपको पीछे की और बात सुनाऊं इतिहास की, तो शुरू शुरू में जब भाई बहने बाबा के बने आ गए, जो हमने महसूस भी किया और सुना भी, कि ये कहां जाता था। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इनकी सबकी शक्लें एक जैसी। अक्सर करके ये बात बहुत चर्चा में रहती थी और हम तो बहुत छोटे थे, हम तो सुनते थे, तब इतनी बात समझ नहीं आती थी। पर अक्सर करके ये बोल होते थे दुनियावी लोगों की, इन सबकी शक्लें एक जैसी हैं। अब एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, अलग अलग परिवारों के हैं, अलग अलग सबके संकल्प, ये कहें संस्कार हैं, पर फिर भी एक जैसी है। कारण क्या था, शक्ल एक जैसी क्यों? बोलो, शक्ल एक जैसी क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है संसार में, ये कथन बहुत प्रसिद्ध है, जो हम सोचते हैं वैसी हमारी सूरत मूरत बनती है। तो सोच ही ज्ञान युक्त है, अंदर में चिंतन ही ज्ञान का है, व्यर्थ है ही नहीं। तो न माथे पे सलवटे हैं, न चाल चलन में कोई बात है। दादियां तो बड़ी मस्त सी थी, कोई भी दादी देखो बड़ी मस्त सी। यज्ञ में बेगरी पार्ट आया तो कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं है खाने को तो चिंता नहीं। आज के अगर भाई बहने होते, चाहे हम होते, तो शायद कहते अरे भाई खाने को भी नहीं है, क्या रहना क्या करना। उस समय वो चिंता नहीं थी, उस समय वो निश्चय था कि बाबा बैठा है हर चीज में, एक ही बात, बाबा बैठा है। और अभी क्या होता है, अभी याद आता है कि अरे इससे तो घर अच्छा था, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी थी। आज हमें फैसिलिटीज दिखाई देती हैं, सुविधाएं, उस समय सुविधाओं वाली तो बात ही नहीं थी। आज तो हम रहने में भी सुविधा ढूंढते हैं कि हमने तो अपने घर में कभी, हम ऐसे नहीं रहे वैसे नहीं रहे, हमने तो कभी ऐसे नहीं खाया वैसे नहीं खाया। पहले तो हम सुनाए, जब मैं भी आई थी, वो कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, दादियों का जमाना तो कुछ और था, जब मैं भी आई थी एकदम पतली सब्जी पानी वाली, उसमें घिया भी ढूंढते ढूंढते मिलता था। अक्सर करके घिया की सब्जी मिलती थी, रोज रात का फिक्स था। और ऊपर से अगर बहन कोई कह दे कि मैं तो ये सब्जी नहीं खाती हूं, तो कहा जाता था 7 दिन का कोर्स कराओ इसको, माने यही सब्जी 7 दिन मिलेगी। 7 दिन के कोर्स से क्या भाव था, ये रोज ये सब्जी रोज 7 दिन खिलाओ तो अपने आप सीख जाएंगे। 7 दिन का कोर्स, एक दिन पतली घिया की सब्जी मुझे याद आता है, और दूसरे दिन सवेरे दोपहर में पतली रस्सा ही रस्सा, पानी ही पानी, गोभी ढूंढते ढूंढते में, गोभी की सब्जी रस वाली। तो यज्ञ में कैसे रहना है, इन दादियों को देखकर हमने सीखा, इनका फाउंडेशन निश्चय का पक्का था। अब उसकी हमें भी आवश्यकता है, ऐसा निश्चय जो मिले बहुत अच्छा, जैसा मिले बहुत अच्छा, मेरी बुद्धि सिर्फ ज्ञान योग में रहे। वो दिन थे जो भाई बहने दिन में 2 बार क्लास करने आते थे। अभी तो कहा जाता है कि क्लास में आओ, ऐसा ही है ना, बहने फोन कर देती हैं जिस दिन आप क्लास में नहीं आते हो कि भाई क्या हुआ क्लास में नहीं आओ, भाई बहने बोलते हैं दीदी क्या करें, हम तो गुरुवार रविवार को ही आ पाते हैं। अच्छा गुरुवार को तो आ ही जाना। अब देखिए कितनी सुविधाएं आपको मिलती हैं। और एक किलोमीटर दूर, डेढ़ किलोमीटर दूर सेंटर होता है, हम बोलते हैं इतनी दूर है दीदी कैसे आई। पहले पूरे शहर में एक सेंटर होता था, एक सेवा स्थान होता था, साइकिलों से भाई बहने आते थे। थी कहां गाड़ियां, थी नहीं, ये साधन नहीं थे, लेकिन निश्चय था क्या, भगवान मिला है, बाबा की मुरली शुरू हो जाएगी, उससे पहले पहुंचना है। अभी तो हम सोचते हैं हाँ कोई बात नहीं, एक आधा पिच चल भी जाएगा तो हरजानी पहुंच जाएंगे ना, पहुंच ही तो रहा हूं ना, कोई बात नहीं, आधा पिच बाद में पढ़ लूंगा। पहले ऐसा नहीं था कि बाबा ने कहा है पहले आधा घंटा योग फिर क्लास, ये पक्का था कि हमें योग के समय पहुंचना है। इसको कहा जाता है निश्चय, कि बाबा ने कहा उस श्रीमत पर मुझे चलना है। अब तो सहज राजयोग शब्द सुन करके हमने सब सहज कर दिया, माना हर नियम मर्यादा को ढीला कर दिया, और इसलिए हमारा जीवन भी ढीला ढाला हो गया है। हमारा जीवन राजयोगी जीवन नहीं रहा, राज ऋषि तपस्वी जीवन नहीं रहा, ढीला ढाला जीवन हो गया। मर्जी से आए, मर्जी से गए, मर्जी से योग किया, मर्जी से सुना नहीं सुना, मर्जी से क्लास की, मर्जी से सेवा की, सब मर्जी से। मेरा मूड नहीं है तो कह देंगे कि दीदी आज सेवा नहीं, आज तो मेरे घर में मेहमान है। और पहले भाई बहने सोचते थे मेहमान है तो क्या हुआ, पहले बाबा की सेवा। और ये कह देते थे उनको भी हम ले आएंगे, वो भी सेवा में मददगार तो बन सकते हैं, या उनके पास चले जाएंगे बाद में मिल लेंगे। प्रायोरिटी ये थी, अब हमारी प्रायोरिटी बदल गई है। इसलिए जीवन में जो रस होना चाहिए वो रस नहीं रहा। तो हम पांडव भवन में आए हैं ये निश्चय की फाउंडेशन अपनी पक्की करके जाओ, बाबा के घर में आए, ये तो हमारे अंदर पक्का हो कि मेरा संसार है तो बाबा है। अब तो मुश्किल आती है, कुछ सुलझता नहीं है तो हम कहते हैं बाबा मैं इतने साल से ज्ञान में हूं, मेरी बाबा तो मदद करता ही नहीं है, सुनता तो है नहीं, बाबा सुनता ही नहीं है तो मुझे रोज आके करना क्या है। अरे पहले ये सोचा जाता था ठीक है हम तप करें अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अब तप का ख्याल नहीं आता। भाषण भी बहने करने जाती थी तो पहले योग करना है फिर जाना है। सेवा का कोई प्रोग्राम मिलता था तो भाई बहने एक दिन पहले उसके लिए तपस्या करते थे ताकि रिजल्ट निकले। अभी तो हम बिजनेस से पहुंच गए तो पहुंच गए, 5 मिनट अपनी शक्ल दिखा दी, नौकरी से पहुंचे नहीं पहुंचे, हर चीज को ऐसे ले लिया है। लेकिन मेरा जीवन ये साधारण जीवन नहीं है, मेरा ये जीवन इसके द्वारा मुझे अनेकों का कल्याण करना है। तो पहले स्व कल्याण तो करो। मेरे द्वारा वो वाइब्रेशन तो जाए सबके पास, तब तो कल्याण हो। लिए कहा, मन ही मन बैठकर अपने मन को तपाओ। कि अब हम बाबा के हैं, मेरा संसार बाबा है, कुछ और नहीं। हर घड़ी हर बात में वही याद आए, दुनिया के सहारे ना ढूंढे। ये दुनिया के सहारे तो आज दिखाई दे रहे हैं, कल ये होंगे ही नहीं। सिर्फ आज हैं लग रहा है, बाकी तो होंगे ही नहीं। तो ये मेरा फाउंडेशन बाबा की याद का, बाबा के प्यार का, निश्चय का पक्का हो। दूसरी बात, बाबा ने आते ही हमें मर्यादाओं का कंगन दिया है। इस ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, और उस मर्यादाओं में सबसे पहली मर्यादा हमारी पवित्रता की है। और पवित्रता में भी बाबा ने कहा हुआ है, मन वचन कर्म तीनों की पवित्रता चाहिए। और जब बात आती है मन वचन कर्म, तो अगर मेरे अंदर किसी के लिए नेगेटिव जगता है तो उसको मन की पवित्रता गिना जाए? विचार करो। अगर मैं वाहियात व्यर्थ बातें करती हूं तो उसको पवित्रता गिना जाए? अब उसका संबंध योग से है, क्योंकि मन मना भाव होना है। बाबा की याद माना क्या? मन मना भाव। अब मन मना भाव कैसे होगा अगर मन तो व्यर्थ में लगा हुआ है, बातों में लगा हुआ है, बाहरी इंटरेस्ट में लगा हुआ है, तेरी मेरी में लगा हुआ है, मन मना भाव कैसे होगा? और उससे प्रभावित होंगे वचन। वचन कैसे निकलेंगे? हम जो बात करेंगे वो कैसी करेंगे? जो अंदर में है व्यर्थ वही बोलेंगे। जबकि बाबा के कई महावाक्यों में ये स्पष्ट है कि बाबा के बच्चों से महावाक्य निकलने चाहिए, साधारण बोल भी नहीं। हमारे बोल साधारण ना हो। हम कैसा बोलते हैं? इसलिए हमारे चेहरे पे जो रंगत आनी चाहिए वो रंगत नहीं आती, क्योंकि अंदर अलग है, बाहर संसार कुछ और है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, रंगत कौन सी आएगी? अब एक सिंपल सा फॉर्मूला अपने अंदर लेके आओ, मन में सोचो। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जिसके संगत में ज्यादा रहेंगे रंगत किसकी चढ़ेगी। मैं फालतू बातों का संग ज्यादा कर रही हूं सारा दिन, व्यर्थ ज्यादा चल रहा है, मेरे ऊपर रंगत कौन सी आएगी? मेरा चेहरा कैसा होगा? उसके हाव भाव कैसे होंगे? योगी वाले तो नहीं होंगे ना, क्योंकि चिंतन नहीं है, चिंता है। चिंतन नहीं है, चिंतन से पहले एक शब्द व्यर्थ, उसी का प्रभाव है। मेरा संग तो यज्ञ में शुरुआत में, पहले जब मुरली चलती थी शुरू शुरू में। मुरली के बाद अक्सर करके ये कहा जाता था, अब जाओ 15-20 मिनट मनन चिंतन, जो बाबा के महावाक्य सुने ना उस चिंतन का, ताकि सारा दिन मुझे किस चिंतन में रहना है वो अभ्यास। अभी तो सुना रहे थे ना, सचिन भाई भी सुना रहे थे, मुरली सुनी बस बाहर निकले बातों में, आए बातें करते हुए आए, गए बातें करते हुए गए, खाने पे गए बातें करते रहे, खाने से निकले बातें करते हुए निकले, तो सारा समय कहाँ जा रहा है, बातों में। तो हमारे ऊपर न रस चढ़ता है न रंग चढ़ता है, हमारे मन पर ज्ञान का रस और रंग दोनों ही नहीं चढ़ता। इसलिए कई बार भाई बहने यहां तक के कह बैठते हैं, मुरली तो वही है ना, बाबा तो वही बातें सुनाते हैं ना, रस वो जो ज्ञान का रस हो, एक एक शब्द का बाबा का आनंद मेरे अंदर समाए, तो मुरली सुनते सुनते भी कई बार क्या करते हैं मालूम है ना, क्या करते हैं, दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। और उस लोक का आनंद लेते रहते हैं, और उसके बाद उनसे पूछो मुरली में क्या था, मुरली बहुत अच्छी थी, था क्या आज की मुरली बहुत अच्छी थी, था क्या वो पता नहीं है। हाँ बाबा को याद करो। आपको हंसी की बात बीच में सुनाती हूँ। एक बहन, एक बार उससे पूछा कि आज मुरली में क्या था, एक पॉइंट रिपीट करनी है। पहले तो सोच में पड़ी क्या रिपीट करूं, क्योंकि दूसरे लोक में थी मुरली के समय पर, और पहले का समय तो ऐसा ही होता था ना कि अक्सर करके मुरली रिवाइज कराई जाती थी मुरली के बाद, ऐसे नहीं कि ओम शांति, एक एक पॉइंट रिपीट करो पूरी क्लास। तो अब उसकी बारी थी, तब उसको रिपीट तो करनी थी, तो उसने मुरली की पॉइंट कौन सी सुनाई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति, क्योंकि वो जो पॉइंट अंदर में जानी चाहिए वो तो कहीं गई नहीं ना। तो वास्तव में ज्ञान का रस भी तभी बैठता है जब हमारे अंदर बार बार ज्ञान का चिंतन चलता है, मनन चलता है, तब रस अंदर में आता है। जो चीजें हम अंदर में बार बार सोचते हैं वही रस बनता है, जो चीजें बार बार जिन बातों का वर्णन होता है वही मेरा रस होता है। मेरा रस किस बात पे है वो देखना है, मुझे क्या बात अपने अंदर लेनी है, पकड़नी है, ये पकड़ने की भी बुद्धि चाहिए। आज मैंने पुरुषार्थ के लिए क्या पकड़ा और उसको मैं मनन करूं, अभ्यास करूं। तो इसलिए दूसरा जो अपने अंदर चाहिए वो पक्का चाहिए कि मेरा मुरली में कितना इंटरेस्ट, क्योंकि बाबा मिलता कैसे है, मुरली। कई बार आता है मुरली से प्यार, मन मुरली धर से प्यार। राधा के हाथ में क्या दिखाते हैं, मुरली, यही दिखाते हैं ना, मुरली। मुझे भी राधे कृष्ण की दुनिया में जाना है, मेरा मुरली से प्यार है, मुरली से प्यार होगा तो मुरलीधर से प्यार। हमारी दादियां ऐसे दादियां नहीं बनी, इनका अध्ययन रहा दिन में 5-6-7 बार मुरली का, और कुछ सोचता ही नहीं था। आजकल तो हर चीज एकदम आपके हाथ में मिल जाती है, मोबाइल में मिल जाती है, पहले ऐसा तो नहीं था। एक मुरली आती थी, सेंटर पे एक कॉपी होती थी, वही बैठ करके उसी से अध्ययन होता था। अभी तो आप सबके पास मुरली होती है, तो भी अपने आप से पूछो, हम दिन में कोई 3-4 बार भी मुरली पढ़ते तो क्या जवाब आएगा? अपने मन से पूछो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बस, कोई आया तो अच्छा बहाना मिलता है कि बस हो गया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, मैंने एक पैरा तो पढ़ लिया ना। और ये दादियां रात को सोने से पहले भी पढ़ा करती थी। मुझे आज भी याद आता है, हम बड़ी दादी के पास कई बार गुड नाइट करने जाते थे, तो दादी कई बार बोलती थी, आओ आओ मेरी रात्रि के गीता पाठशाला के स्टूडेंट, ऐसे बोला करती थी। फिर आज की मुरली रिपीट करेगी, देखो आज बाबा ने ये कहा था, याद है आज बाबा ने क्या कहा? ये कहा था, और पता है कल बाबा क्या कहने वाला है? इतना प्यार से दादी बोलती थी, माना वो कल की मुरली पढ़ चुकी होती थी कि कल क्या सुनाना है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे हम लोग गुड मॉर्निंग करने जाते थे, हमारा अभ्यास था जाने का, तो सवेरे सवेरे दादी जब मिलती थी तो एक ही बात गुड मॉर्निंग के साथ, आज बाबा ने ये कहा है, आज बाबा ने कान खींचे हैं, आज बाबा ने योग के ऊपर जोर डाला है, इस तरीके से दादी बात करती थी, कोई और बात नहीं। आप में से बहुतों ने दादी जानकी को देखा होगा, देखा है? किस किस ने देखा? देखो सबने देखा। तो दादी जानकी जब हम सबसे मिलती थी तो क्या सुनाती थी बताओ? या तो मुरली, मुरली की क्लास, मुरली सुनाने आती थी तो भी पहले मुरली का मनन 10-15 मिनट दादी वही सुनाती थी, मनन, जब तक दादी ने मुरली सुनाई पहले मनन सुनाती थी और उसके बाद दादी मुरली पढ़ती थी। जनरल में भी जब मिलती थी दादी पक्का कराती थी, मैं कौन मेरा कौन, अभ्यास था ना। और ऐसा नहीं कि भाई बहनों से ही दादी ऐसी बात करती थी, दादी से VIPs मिलने आते थे तो भी दादी उनको यही ज्ञान सुनाती थी, सीधा ज्ञान, वही उनका जीवन का खजाना था। और दादी से एक एक मिलकर खुश होके जाता था। और हम क्या बोलते हैं, अब अपने अंदर को टटोलो, हम क्या बोलते हैं? हमसे कोई मिलने आता है हम ज्ञान की बात सुनाते हैं? हम बोलते हैं नहीं, देखो ये तो मिलने आया है, इससे तो इसकी ही बात करनी होगी ना गृहस्थी की, ज्ञान सुनाऊंगी तो बुरा मान जाएगा। हमारा सोच, हम उसकी स्थूल बातों में दुनियादारी में लग जाते हैं, हमारे मुख से ज्ञान वर्णन नहीं होता। अब जब ज्ञान का वर्णन का ही अभ्यास नहीं है तो अंदर में जाएगा क्या? हम ये नहीं सोचते कि इनको मालूम पड़ना चाहिए मैंने क्या सीखा है। पहले भाई बहने यही बोलते थे, जो भाई बहने गृहस्थी आते थे कोशिश करते थे घर में भी जाके ज्ञान की बातें करें, क्यों करें, मालूम पड़ना चाहिए ना, कहां जाते हैं। ये नहीं सोचते थे कि बंधन ज्यादा हो जाएंगे, बल्कि पहले बंधन थे आज तो है ही नहीं, तो भी सोचते थे ठीक है। वो दृढ़ता थी कि मुख से ज्ञान वर्णन करना है, ज्ञान सुनाना है, ज्ञान की बात आपस में करनी है। तो जब आपस में मिलते थे तो भी आपस में यही बात, आपस में ज्ञानी परिवार मिले तो भी ये बात करते थे, आजकल आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है? आप में से कितने ऐसी बात करते हैं? पूछो अपने आप से। हम मिलते हैं तो क्या करते हैं, कभी पूछते हैं आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है? पहले आपस में पूछा जाता था, आजकल आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है? आप अपने पुरुषार्थ की बात सुनाओ हमें भी, सुन करके वो चीज आएगी, हम भी पुरुषार्थ में लगे। आपस में भाई बहने भी यही आपस की बात करते थे। आजकल हमारी बातें स्थूल बातें हो गई, मुझे ये पसंद है, मुझे ये लाना है, इसने मुझे ये कहा, सारी स्थूलता। ज्ञान के पुरुषार्थ की बात, आज मैंने योग इतना किया, क्या कभी हम शेयर करते? बाबा ने मुझे योग का अनुभव आज ये कराया, हम ये बात करें। अपने अंदर में ज्ञान का रस डालो कि मेरे मुख से यही बात, यही सार, यही आवाज निकले कि आज मैंने ज्ञान का क्या पुरुषार्थ किया, आज मैंने योग में क्या अनुभव किया, आज मैंने ये परीक्षा आई तो पार कैसे की, कौन सा संकल्प रखकर पार की, ना कि दुविधाएं। किस दृढ़ता से मैंने ये परीक्षा पार की, कैसे की, ये अभ्यास ही हमें आगे भी बढ़ाता है, खुशी भी देता है, शक्ति भी देता है। और जो बात शुरू में कही थी कि लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल तब तो आएगी ना, एक जैसी कैसे मिलेगी, वो चमक एक जैसी, वो रूहानियत दिखाई दे तब आएगी। तो अभी पांडव भवन में हम दो दिन और हैं, इसी अभ्यास में लगो कि यहां से ये मेरा चेहरा बदल जाना चाहिए। आप परिवार में भी जाओ तो वो पूछें, ऐसा क्या करके आए जो आप तो बदल गए हो, आपके अंदर चमक आ गई है। कौन सी चमक? वो दिखाई दे, ज्ञान की चमक, क्रीम की चमक नहीं, ज्ञान की चमक, योग की चमक, निश्चय की चमक। ठीक है, ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।